भो मित्रगणाः स्वागतं व्याहरामि तथा च नमस्करोमि रेडियो मधुबनस्य श्रव्यमञ्चे। अद्य वयं शिवमहिम्नस्तोत्रस्य दशमं तथा च एकादशं श्लोकं पठिष्यामः। शृण्वन्तु मित्रगण, स्वागत है रेडियो मधुबन के श्रव्यमञ्च से। आज हम शिवमहिम्नस्तोत्र का 10वां तथा 11वां श्लोक पढ़ेंगे। आप सुनिए। कवि श्री पुष्पदंत कहते हैं,
तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरिञ्चिर्हरिरधः परिच्छेत्तुं यातावनलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धाभरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति।
कवि एक बहुत सुंदर कथा का उपयोग अपने काव्य में करता है। वह कहता है,
तवैश्वर्यम यत्नाद यदुपरि विरिंचिर हरिरधाः।
तो इस श्लोक के पीछे एक कथा है। वह कथा इस प्रकार है कि एक बार विरिंची अर्थात ब्रह्मदेव और हरि अर्थात विष्णु, दोनों में विवाद छिड़ गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, क्योंकि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और सृष्टि की पालन का जिम्मा विष्णु के ऊपर है, तो दोनों में श्रेष्ठ कौन हुआ। तो जब विवाद होने लगा तो अचानक उन्होंने देखा कि उन दोनों के बीच में एक अग्नि का विशाल स्तंभ दोनों के बीच में आकर के खड़ा हुआ है, तेजोमय ज्वाला युक्त। तो दोनों ने सोचा कि अरे ये है क्या, इसकी नापतोल करते हैं, इसका परिमाण देखते हैं। तो ऊपर से विरिंची अर्थात ब्रह्मदेव ने देखना शुरू किया और अधाहा अर्थात नीचे से हरि अर्थात विष्णु ने देखना आरंभ किया और उन्हें उसका कोई और छोर या पार नहीं दिखा। तो इसी कथा का वर्णन यहाँ है कि हे गिरीश, तुम्हारा ऐश्वर्य इतना अधिक है कि एक बार विरिंची और हरि ने तुम्हारा पार पाने के लिए प्रयास किया, तो फिर क्या हुआ।
परिच्छेद तुम याता वनल मनल स्कंध वपुषः।
अब यहाँ कवि ने अनल शब्द का प्रयोग लगातार दो बार किया, तो यहाँ फिर एक लंबा संधि का शब्द है,
याता वनल मनल स्कंध वपुषः
अर्थात यातौ अनलम अनल स्कंध वपुषः। यहाँ लगातार अनलम अनल स्कंध वपुषः, इस प्रकार अनल शब्द का प्रयोग दो बार लगातार किया है कवि ने। अनल स्कंध वपुषः, तो यहाँ पर अनल शब्द का अर्थ है अग्नि, स्कंध अर्थात कंधे। तो शंकर की जटाओं की कल्पना कवि ने अग्नि शिखा के रूप में की है। तो जिसके कंधे पर यह अग्नि रूपी जटाएं विराजमान है, ऐसे वपु वाला, ऐसा शरीर रखने वाला शिव, इसलिए वह शब्द हो गया अनल स्कंध वपुस। ये बहुब्रीहि समास हो गया और उसका षष्ठी का रूप हो गया अनल स्कंध वपुषः। तो हे शिव, हे गिरीश, तुम्हारा अर्थात अनल स्कंध वपुस का ऐश्वर्य कितना विशाल है कि विरिंची और हरि दोनों ही उसका परिमाण नहीं पा सके, उसका आर पार नहीं पहचान सके। जो एक अग्नि शलाका के समान उनके सामने कोई खड़ा हो गया था, उसका पार वे नहीं पा सके। और यातौ, यहाँ चूंकि द्विवचन है, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु दोनों के विषय में कहा जा रहा है कि वे दोनों असमर्थ हो गए तुम्हारा पार पाने में, तो यातौ शब्द का प्रयोग हुआ। तो फिर क्या हुआ कि दोनों ने अपने अहंकार को छोड़ करके ततो भक्ति श्रद्धा भर गुरु गुणद्भ्याम गिरीशयत। हे गिरीश, तब उन दोनों ने भक्ति और श्रद्धा में भर करके तुम्हारी स्तुति की, तुम्हारी प्रार्थना की, अपने अहंकार को छोड़ दिया और गुणद्भ्याम अर्थात स्तुति। लेकिन यहाँ पर चूंकि विरिंची और हरि दोनों ही स्तुति कर रहे हैं, तो दोनों के द्वारा की गई स्तुति, इसलिए गृणद्भ्याम यह द्विवचन लगाया गया है। और फिर स्वयं ही तुमने अपना स्वरूप प्रकट किया और बता दिया कि वह तुम ही थे, तस्थे, अर्थात तुमने स्वयं को उन दोनों के लिए प्रकट किया और उन्हें तुम्हारे स्वरूप की समझ आई। तो हे गिरीश, ऐसी तुम्हारी प्रवृत्ति है कि जो भी तुम्हारे प्रति भक्ति और श्रद्धा से समर्पित हो जाते हैं, उन्हें तुम बहुत सरलता से, खुशी खुशी, प्रसन्नता से अपना निज स्वरूप दिखा देते हो। तो फिर तव किमनु वृत्तिर न फलती अनुवृत्ति ही, अर्थात प्रार्थना, तो तुम्हारे प्रति की गई प्रार्थना का फल क्यों ना मिले, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही इस प्रकार है कि अल्पसंतुष्ट या आशुतोष, छोटी सी प्रार्थना से ही तुम प्रसन्न हो जाते हो, ऐसा तुम्हारा स्वभाव है। तो फिर ऐसे तुम्हारे लिए कोई किस प्रकार समर्पित ना हो। और इसके अगले श्लोक में कवि एक दूसरी कथा का प्रसंग बताते हुए अगला श्लोक यह लिखता है।
अयत्नादासाद्य त्रिभुवनम वैरव्यतिकरम दशास्यो यद्बाहून भृतरणकण्डूपरवशान् शिरः पद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरुहबलेः स्थिरायास्त्वद्भक्तेस्त्रिपुरहरविस्फूर्जितमिदम्।
अब इस श्लोक में कवि ने एक दूसरी कथा का संदर्भ लिया है और यह कथा है रावण से संबंधित। दशास्य अर्थात दश मुखों वाला रावण। तो इस रावण की कथा कवि कहता है, और यहाँ पर एक लंबे शब्द का संधि के साथ प्रयोग करता है, त्रिभुवनम अवैर व्यतिकरम। त्रिभुवनम अवैर व्यतिकरम, जिसने त्रिभुवन को अवैर कर दिया, अर्थात सारे शत्रुओं का नाश कर दिया। और किस प्रकार? तो अयत्नाद असाध्य, यह सब किस प्रकार किया? तो अयत्नाद,
यत्न अर्थात प्रयत्न, प्रयास, तो यत्नाद अर्थात प्रयास पूर्वक, अयत्नाद
याने बिना किसी विशेष प्रयास के, बहुत ही सहजता से,
असाध्य जिसने पा लिया या कर लिया,
बहुत ही सुगमता से उसने सारे अपने शत्रुओं का विनाश कर दिया। और इस दशास्य का आगे वर्णन और भी लिखा है कि यद बाहु नभृत रण कंडू परवशान, यह दशानन कैसा था? तो रण कंडू, युद्ध की खुजलाहट उसकी बाहों में थी, युद्ध के लिए उसकी भुजाएं खुजलाया करती थी, और वह बहुत ही सरलता से अपने सारे शत्रुओं का विनाश करके अवैर बन गया था। तो कवि कहता है कि इतनी क्षमता, इतना सामर्थ्य उसमें कहाँ से आया, उसके पीछे रहस्य क्या है? वह रहस्य बताता है, शिरः पद्मश्रेणी रचित चरणाम भोरुह बले है, फिर एक लंबा शब्द बन गया संधि से, लेकिन इस संधि में पहले हम एक शब्द देखेंगे अम्भोरुह। तो अम्भ का अर्थ हुआ पानी और अम्भोरुह का अर्थ हुआ कमल। जैसे तुलसीदास ने भी कई जगह सरोरुह शब्द का प्रयोग किया है, उसी प्रकार अम्भोरुह अर्थात कमल। तो पद्मश्रेणी, रावण ने क्या किया कि अपने स्वयं के सिर को कमल की श्रेणी में उसने गिन लिया। तो कथा यह है कि एक बार रावण जब शिव जी की पूजा कर रहा था और पूजा के लिए उन्हें एक के बाद एक कमल पुष्प अर्पित कर रहा था, तो उसे ऐसा लगा कि उसके कमल पुष्प कम पड़ गए हैं। तो उसके पास चूंकि 10 सिर थे, तो अपने सिर को ही कमल की श्रेणी में रखते हुए उसने एक एक करके अपने सिर काट करके कमल के फूल की जगह अपने सिर को ही शिव जी के चरणों में अर्पित करना आरंभ किया। और इस प्रकार जब उसने 9 सिर अर्पण कर दिए और 10वां सिर भी वो काटने जा रहा था कि शिव जी ने उसे दर्शन देते हुए उसे रोक लिया और उसे प्रसन्न होकर के कहा कि तुम क्या मांगते हो, मांगो।
तब रावण ने यह मांगा कि उसके सारे सिर वापस पहले की तरह हो जाए और वह शत्रुओं पर सदा सदा विजय प्राप्त करता रहे। तो हे त्रिपुरहर, इस प्रकार यह रावण तुम्हारी भक्ति में स्थिर होकर के जो यह दिव्य कर्म उसने किया, उससे उसने क्या अर्जन किया, कौन सा फल अर्जन किया कि तुमने उसे सारे शत्रुओं पर सदा विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और इसीलिए वह सरलता से पूरी पृथ्वी को अवैर कर सका और फिर भी उसकी बाहें युद्ध के लिए खुजलाती रहीं और उसे युद्ध करने वाला अपने लायक कोई बहुत काल तक नहीं मिल सका। तो मित्रों, इस शिव महिमन स्तोत्र को हम आगे और भी पढ़ते चलेंगे। तुम पढ़ते रहो संस्कृत, सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।